نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب لائے تھے علم کے سلسلے میں باری باری کا, اور اب اس کی اس بات کے لیے ایک حدیث لا رہے ہیں. یہ حدیث شریف حدثنا ابو الیمانی, یہ پوری سند کتاب النکاح میں بھی آئے گی یا ہو چکی ہوگی. حدثنا ابو الیمان کے حوالے سے, یہ ابو الیمان جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں, وہ شعیب سے نقل کرتے ہیں اور وہ امام زہری سے نقل کرتے ہیں. اب یہاں جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحویل کر دی, اور یہ پوری سند وہاں کتاب النکاح میں ذکر کی ہے. وقال ابن وہب اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی صار عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. یہ واقعہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. کیا واقعہ ہے؟ قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد. قال کے فائل حضرت عمر, حضرت عمر نے یہ قصہ سنایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو, اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہم کو سنا رہے ہیں امت کو, اس لیے قال کے فائل ہوں گے حضرت عمر. کنت میں اور میرا ایک پڑوسی. اب یہ کون ہے حضرت عمر کے پڑوسی بھائی؟ من الانصار, وہ ایک انصاری صحابی تھے. اب انصار میں تو بہت سارے ہیں. فی بنو امیہ ابن زید, انصار میں ایک شاخ ہے بنو امیہ ابن زید, تو وہ پڑوسی کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو امیہ ابن زید سے تھا. سمجھ میں آیا خلاصہ؟ حضرت عمر کے پڑوسی کون تھے؟ انصاری صحابی, اور وہ انصاری صحابی انصار کی کون سی شاخ میں سے تھے؟ بنو امیہ ابن زید میں سے ان کا تعلق تھا. اب یہ کون تھے؟ ان کا نام یہاں ذکر نہیں کیا, لیکن کتاب النکاح میں جہاں یہ روایت ہے اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پڑوسی کا نام ہے اوس ابن خولی, الف واو سین ابن خا واو لام یا, اوس ابن خولی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عمر کے پڑوسی انصاری صحابی کا نام ہے. بعض حضرات کو ایک شک ہو گیا ہے پڑوسی کے نام کے بارے میں. کیا شک ہوا ہے؟ کہ حضرت عمر کے پڑوسی کا نام ہے اتبان ابن مالک ابن عمر ابن اجلان الخزرجی. یہ بعض حضرات کو شک ہوا ہے, جیسے حاشیے میں بھی وہی نام نقل کیا گیا ہے اتبان ابن مالک ابن عمر ابن اجلان الخزرجی. یہ انہوں نے نقل کیا ہے علامہ ابن بشقوال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, حاشیے میں نقل کیا ہے, لیکن اس میں کچھ چک ہوئی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح میں جہاں یہ روایت ہے وہاں صراحت کی ہے کہ یہ اوس ابن خولی مراد ہے. وہی امین اوالی المدینتی, پڑوسی کی تعین ہو گئی لیکن میلہ कौन सा मेला? तो कहा मदीना में अवाली में रहते थे। अवाली उलू से मदीना का एक हिस्सा है, जरा बलंद ऊंचाई वाला, उसको कहते हैं अवाली। और उसके मुकाबले में जो दूसरा इलाका है वो सिफली यानी नीचाई वाला है, नशेबो फराज। तो नशेबी इलाका, फराजी इलाका, अवाली इलाका और सफा सिफली इलाका। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके पड़ोसी का मकान था मदीना में अवाली वाले महल्ले में, यानी बालाई जमीन वाले इलाके में। ये अवाली क्या थी? छोटी छोटी बस्तियां थी, छोटी छोटी आबादियां थी, मदीना के मशरिक और जुनूब में थी। मदीनतुल मुनव्वरा के मशरिक में और जुनूब में ये आबादी थी छोटी छोटी, और उसके पूरे मजमे को अवाली कहते थे। और तकरीबन 6 मील के इलाके में ये फैली हुई थी अवाली बस्ती, अभी तक उसको अवाली कहते हैं। और हमने एक दावत अवाली में खाई भी है। एक सिमलक के साहब थे, वहां रहते थे अवाली में। बहुत साल पहले एक मर्तबा हज में उनको मिलने गए थे, तो अवाली में रहते थे, उनके यहाँ खाना भी खाया था। तो ये अवाली बस्ती आज तक मदीना में इसी नाम से पहचानी जाती है। वो असलन अफ्रीका से आके मदीना आबाद हुए थे। वही मिन अवालील मदीनती, ये मदीनतुल मुनव्वरा के अवाली में थी ये जगह। वकुन्ना नतना वबुन नुजूल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिरी के लिए बारी बना रखी थी। यानी वो हजरत औस अंसारी पड़ोसी और हजरत उमर दोनों ने आपस में बारी बना रखी थी कि एक दिन वो हुजूर की खिदमत में मजलिस में जाएंगे, एक दिन मैं जाऊंगा। ये बस तर्जमतुल बाप से ही रब तक की चीज है कि हमने बारी बना रखी थी। और कई सहाबा का ऐसा मामूल था, बारी क्यों बारी बनानी पड़ती थी? किसी की खेती है, किसी की मुलाजमत है, किसी के पास जानवर है, घरेलू मशगूलियां हैं। हर वक्त हर रोज हुजूर की खिदमत अकदस में जाना मुश्किल, और ताजी ताजी वही और अहकाम आवे उससे महरूम रहना भी मुनासिब नहीं। तो इस तरह जो है बारी बना लेते थे। अब अगर घर में मेंबर ज्यादा है तो घर वाले बारी बना लेगा, घर में मेंबर ज्यादा नहीं है तो अड़ोस पड़ोस वाले आपस में बारी बना लेगा कि भाई एक दिन मैं कारोबार देखूंगा, एक दिन तू बारी पर जा, एक दिन मैं यहां रहूंगा तू आ जा, ऐसी बारी बना रखी थी। यंजिलु यौमन व अनजिलु यौमन, वो पड़ोसी एक दिन हुजूर की खिदमत में जाते और एक दिन में जाता। फिर क्या करते? खाली बारी बनाने से काम नहीं चलता भाई। फ़ाइज़ा नज़ल तुजीतुहु बिखबरि ज़ालिकल यौमि मिनल वही वग़ैरिही, सो जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता तो उस दिन जो वही और अहकाम हुजूर ने बतलाए उसकी खबर लेकर के मैं आता। यानी जो वही नाजिल हुई, जो अहकाम नाजिल हुए, उसकी इत्तिला लेकर के मैं आता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुना, फिर घर आऊं, पड़ोसी को बुलाऊं, औस भाई इधर आओ, चलो बैठो, आज मैं गया था मजलिस में, ये वही नाजिल हुई, ये अहकाम बतलाए, ये वाकिया हुआ, ऐसा मैं करता था। ये है असल मकसद। यानी सिर्फ बारी में जाके आ नहीं जावे, वहां से आने के बाद जो सीखा है वो साथियों को बतलावे, ये है असल बारी का मकसद। وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب وہ حضور کی خدمت میں جاتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی جس دن ان کی باری ہوتی وہ جاوے، وہی سنے، احکام سنے، کوئی واقعہ ہو وہ سنے، پھر مسجد نبوی سے حوالی آوے اور آ کر مجھے سنا دے گئے. یہ ہے اصل باری کا گڑ مقصود، کہ وہاں جو سنا وہ لا کر کے پہنچا دینے کا. اس میں متعلقین کو بتلاؤ، گھر والوں کو بتلاؤ، پڑوس پڑوس والوں کو بتلاؤ، یہ سب ہونا چاہیے کام کاج. فَنَزَلَ صَاحِبِ الْأَنصَارِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو میرے پڑوسی انصاری ساتھی ایک دن اپنی باری پر پہنچے، یعنی اس دن ان کی مسجد نبوی میں حاضری کی باری تھی، مجلس اقدس میں حاضری کی باری تھی، اور وہ گئے اور وہاں سے آئے. فَضَرَبَ بَابِ ضَرْبًا شَدِيدًا، اور آ کر میرے گھر کے دروازے پر رنگ پہ رنگ مار رہے ہیں، گھنٹی پہ گھنٹی بجا رہے ہیں، تو کھولو بھائی، کھولو عمر، جلدی کھولو، برابر کھٹکھٹا رہے ہیں جیسے کوئی عظیم واقعہ وہاں سے لے کے آئے، اس لیے وہ برابر دروازہ کھٹکھٹانے لگے میرا. پھر انہوں نے، جب میں نے دروازہ کھولنے میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہوگا، تو باہر سے آواز لگائی، فقال، وہ پڑوسی بولے، اسم اسم ہوا، کیا عمر گھر میں ہے؟ اسم ہوا، کیا عمر گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں دروازہ نہیں کھولے؟ کھولو. ففزعتو، تو میں گھبرا گیا، اسی لیے کہ بھائی اتنی زور سے کیوں کھٹکھٹا رہے، کیا وجہ ہے کہ اتنی تیزی سے تم دروازہ کھٹکھٹا رہے؟ میں گھبرایا. فخرجت الیہ، تو میں پڑوسی کے پاس نکل کے آیا. فقال، تو پڑوسی نے کہا، یعنی وہاں کی کارگزاری مسجد نبوی کی، قد حدث امر عظیم، بڑا حادثہ پیش آیا، بڑا حادثہ پیش آیا. اب یہاں اختصار ہے، بہت اختصار ہے، یہاں روایت میں بہت اختصار ہے. میں نے پوچھا کہ کیا غسانیوں نے حملہ کیا مدینہ پر؟ ان دنوں میں غسانیوں کے حملے کی باتیں چل رہی تھی، تو کہا نہ. کہا پھر کیا، جلدی بولو، کیا حادثہ پیش آئے؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. اچھا، حضور نے امہات المومنین کو طلاق دے دی؟ تو یہ واقعہ حضرت عمر کے لیے دو حیثیت سے اہم تھا. ایک حیثیت کیا، حضور کا حضرت امہات المومنین کو طلاق دینا، ایک بڑا واقعہ ہے، اور دوسرا امہات المومنین میں آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ ہے. تو ایک باپ کے لیے بیٹی کی طلاق بہت بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ دو حیثیت سے ایک عظیم حادثہ تھا. اس لیے حضرت عمر کو بھی بڑا اثر ہوا کہ ارے یہ کیا ہو گیا. تو حضرت عمر فوراً روانہ ہوئے حوالی سے مدینہ جانے کے لیے، کہ چلو ذرا تحقیق کر کے آوے. فدخلتو علی حفصہ، اب آ کے ڈائریکٹ حضور کے پاس نہیں گئے، پہلے اپنی صاحبزادی کے یہاں گئے، ام المؤمنین حضرت حفصہ کے یہاں گئے. فیضہ ہی تب کی، رو رہی تھی بیٹھ کر کے حضرت حفصہ، رو رہی تھی. فقلت، میں نے پوچھا بیٹی کو، اطلق کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دی؟ بہت دن بعد آج دھوپ کی نعمت ملی ہے ذرا نے. تو کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی؟ قالت لا ادری، کہا ابا مجھے نہیں معلوم کہ اس نے طلاق دی کہ نہیں دی. اب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے آپس میں وفد کی شکل میں کہا حضور کو کہ ذرا نفقہ خرچہ پانی بڑھاؤ ہمارا، یہ ان کی درخواست تھی. چونکہ وہ فتح خیبر ہوئی، بنو قریظہ کی فتح ہوئی، بنو نذیر کی فتح ہوئی، تو تمام صحابہ کو جنہوں نے بھی شرکت کی غنیمت میں حصہ ملا، تو امہات المومنین نے سوچا کہ حضور کو بھی غنیمت میں حصہ ملا ہے، تو حضور کے پاس بھی بڑی دولت آئی ہے، لہذا ہمارے خرچے کے اندر کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے سب نے مل کر کے وفد کی شکل میں درخواست کی، حضور کچھ خرچہ پانی بڑھاؤ ہمارا۔ اس سے حضور بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر کے بالا خانے میں تشریف لے گئے، علیحدگی اختیار کر لی۔ اب یہ جو علیحدگی اختیار فرما لی، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لاتے پھر اوپر چلے جاتے، اس کو بہت سے حضرات نے طلاق پر محمول کر دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ بعض مرتبہ ایسی غلط فہمی ہوتی ہے، تو حضور نے طلاق نہیں دی تھی، علیحدگی اختیار فرما لی تھی، تو اس علیحدگی اختیار فرمانے کو انہوں نے تعبیر کیا کائی سے، طلاق سے۔ اب حضور تشریف نہیں لاتے تو مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہوتے، روتے، آپس میں مذاکرہ کرتے، ارے کیا ہو گیا حضور ناراض، مجلس نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھاتے ہیں پھر اوپر تشریف لے جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ صحابہ پر بھی بڑا اثر تھا، تو مسجد میں جمع ہوتے، مذاکرہ کرتے، غم زدہ ہوتے، ادھر امہات المومنین روتی تھی، کسی کو مجال نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے جائے حضور کیا ہوا۔ تو اب حضرت حفصہ نے جب بتلایا کہ مجھے نہیں معلوم، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بیٹی حفصہ کے یہاں سے فارغ ہو کر ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدھا حضور کی خدمت میں پہنچا، نیچے ایک بچہ کھڑا ہوا تھا خادم، اس کو کہا کہ جاؤ حضور سے اجازت لو میرے آنے کے لیے، انہوں نے جا کے اجازت لی تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اجازت کے لیے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت عمر کھڑے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا جاؤ نا حضور کو درخواست کرو، عمر ملنا چاہتا ہے، پھر بھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اجازت نہیں ملی۔ پھر تیسری مرتبہ بچے کو بھیجا اور یوں کہلوایا، میں حفصہ کی طرف داری کرنے آیا نہیں ہوں، یوں کہلوایا، میں حفصہ کی سفارش کرنے آیا نہیں ہوں۔ یعنی اگر آپ کو اپنی پاک بیویوں سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے، اور آپ کی پاک بیویوں میں میری بیٹی بھی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں میری بیٹی حفصہ کی طرف سے کوئی سفارش کرنے آیا ہوں، طرف داری کرنے آیا ہوں، یہ مت سمجھنا۔ تیسری مرتبہ میں حضور نے اجازت دی کہ آؤ، عمر کو بلاؤ اندر۔ گئے حضرت عمر، فقلت وانا قائم، میں جا کے بیٹھا بھی نہیں، کھڑا ہی رہا۔ حضرت عمر کا ادب دیکھو کہ میں کھڑا رہا، بیٹھا نہیں، جا کے میں نے جا کے ڈائریکٹ پوچھا، اطلقت نساءک، حضور آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی ہے میں نے، وہ تو ان کی اصلاح کے لیے کچھ میں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، طلاق نہیں دی ہے۔ تو وہیں مارے خوشی کے، مارے تعجب کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر، یعنی لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، حضور نے طلاق نہیں دی ہے، خوشی کے مارے نعرہ لگایا، تعجب کے مارے نعرہ لگایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خوشی کے مواقع پر نعرہ لگانا ثابت ہے، چونکہ حضور کی حاضری میں نعرہ لگایا، حضور نے تنبیہ بھی نہیں فرمائی، تقریر رسول حجت ہو گئی۔ اور تعجب کے موقع پر بھی اس طرح نعرہ لگا سکتے ہیں، یعنی یہ اسلامی طرز ہے، یہ نہیں کہ خوشی میں ہجڑوں کی طرح تالیاں بجانے بیٹھ جائے۔ ये कोई तरीका हुआ पागलों जैसा। नारा अल्लाह अकबर, फकुल तो अल्लाह अकबर, बस तर्जमतुल बाप से तो वही मुनासबत है कि मैंने अपने पड़ोसी के साथ बारी बना रखी थी, इससे बारी का इस बात हुआ। ये वाकिया बहुत लंबा है, मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में और शान नुज़ूल की तफसीली रिवायात में बड़ा तफसील से ये वाकिया आया है। तमाम तफसीलात अगर देखनी हो तो फ़कीर का एक मजमुआ तकारीर है, कुरान में आए हुए ख़वातीन के वाकियात, उसके अंदर ये वाकिया पूरी तफसील से मौजूद है। गालिबन 3 बयानात है, उसमें आप पूरी तफसील पढ़ लें। 3 मजलिस में हमने वहाँ मलावी की मस्तूरात में बयान किया था, वो छप चुकी है किताब, तो उसमें आप पूरी तफसील से देखें और ज़रूर देखें ताकि इस वाकिये के तमाम गोशे आ जाएं। बुखारी में और दीगर कुतुब अहादीस में जितनी भी रिवायात है सबका खुलासा आपको वहाँ मिलेगा। जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नया तर्जमतुल बाब ला रहे हैं, बाबुल गदब फिल मौइज़ति व तालीम इज़ा रआ मा यकरहु। बड़ा मजेदार बाब है। क्या खुलासा? जब सामईन की तरफ से, मुतअल्लिमीन की तरफ से, मुरीदीन की तरफ से कोई शरई नापसंदीदा चीज़ सामने आवे, अदब के खिलाफ कोई बात पेश आवे, तो उनके ऊपर गुस्से भी होना चाहिए। कितना बड़ा अदब है देख लिया कि मुतअल्लिमीन और वाज और तकरीर में सामईन और पीर के मुरीदीन, उनकी तरफ से कोई खिलाफ शरा खिलाफ अदब बात पेश आवे तो गरम भी होना चाहिए, खाली नरम नहीं रहने का, गरम भी होने का। इसके इस बात में इमाम बुखारी ये रिवायत लाए हैं, देख लिया। एक मकसद ये तर्जमतुल बाब का, नंबर 2। दूसरा मकसद समझो, काजी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया कि गुस्से की हालत में काजी साहब फैसला न करें। ये हुजूर ने फरमाया काजियों को, इसलिए कि काजी साहब गुस्से की हालत में फैसला करें तो इंसाफ पर कायम नहीं रहेंगे, इसलिए गुस्से की हालत में काजी साहब को फैसला करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो उससे किसी को ये वहम हो सकता था कि तालीम और वाज में भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, काजी साहब को हुजूर ने गुस्सा करने से मना किया, तो उससे किसी को वहम हो सकता है कि मौलिम साहब, वाइस साहब, पीर साहब, वो मुतालिकीन मुरीदीन तलामिजा के ऊपर गुस्सा न होवे। तो इमाम बुखारी ये तर्जमतुल बाब लाकर उस वहम का तस्फिया कर रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है, मुतालिमीन पे गुस्से हो सकते हो, मुरीदों पे गुस्सा हो सकते हो, तलामिजा पर गुस्से हो सकते हो, इसका इस बात कर रहे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 3, किबारे तलामीज़ा को तो मारने तक की इजाजत साबित है। जरा भाई अजरीब उसे काम लेने का होता है, किबार के लिए शुर्रा लिखते हैं, अब मदरसे में उल्टा होता है, सिगार को मारते हैं और किबार को कोई कुछ करता ही नहीं है, हालांकि किबार को सपाटना चाहिए। हम दोहरा पढ़ते थे तो हमारे यहाँ डाबेल में ये तरतीब है कि छोटे बच्चों की नमाज अलग होती है, अभी भी उनको ताकि वो सही नमाज पढ़े, उनकी तरबियत होती है, दुआएं सुनी जाती है। तो दौरे में से मुंतखब तलबा को उनकी निगरानी हर साल हवाले की जाती है ताकि वो तरबियत उस सिबियान सीखे वो दौरे के साल में। तो हमारे मरहूम शेखुल हदीस साहब महाराणा इकराम अली साहब और अभी हजरत वासा लेके पढ़ाने आते हैं उम्र की वजह से रिवायत में, तो छोटे बच्चे पूछे कि शेख साहब क्यों आसा लेके आते हैं, तो हम छोटे बच्चों को कह कि दौरे वाले शरारत करें तो मारने के लिए, इसलिए वो आसा लेके आते हैं। तो किबार को तो जरा भाई अजरीबू तक का इस बात होता है, आपने नमाज के बाद में पढ़ा है ना, वजरीबुहुम इज़ा बलगू अशरा, 10 साल की उम्र हो जाए नमाज में कोताही करे तो सपाट हो उनको। और साहिब नूरुल इज़ा ने तो यहाँ तक लिखा कि इतना मारो कि खून बहने लगे, नूरुल इज़ा में सरातन मसला मौजूद है देख लेना, इतना मारो कि खून बहने लगे नमाज में कोताही करने वालों का। नंबर 4, सख्ती करने का तबीयी असर होता है कि आइंदा मुतालिम मुरीद मेहनत में लग जाता है, बड़ा अजीब फायदा होता है कि मुरीद भी काम में लग जाता है, मुतालिम मेहनत में लग जाता है, इसीलिए सख्ती करनी चाहिए, मुफीद है। नंबर 5, पीछे हदीस पड़ी यस्सिरा वला तुअस्सिरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल आसानी का था, तो कोई ये ना समझे कि हुजूर हर मौके पे आसानी करते थे। इमाम बुखारी ने इस तर्जमतुल बाब के जरिए इस्तिस्ना साबित किया है कि हुजूर का आम मामूल आसानी का था, लेकिन तालीम तरबियत के मौके मुस्तस्ना है, उसमें हुजूर सख्ती भी फरमाते थे। देखो कुरान के अंदर ही आया ना, लीमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ये लीमा क्या है, तंबी है, लीमा तंबी के लिए आया, अफल्लाहु अनका लीमा अजिंता लहुम, अफ्व को मुकद्दम करके फरमाया क्यों आपने इनको पीछे रहने की इजाजत दी थी सुस्ती करने वालों को। तो ये लीमा तंबी ही जुमले है, कुरान में मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल आसानी का था यस्सिरा, लेकिन इसमें इस्तिस्ना है कि बाज मौके पर आपने सख्ती से भी काम लिया। नंबर 7, कुरान की आयत से इस्तिस्ना बतलाना है इमाम बुखारी को। कुरान में क्या आया, वक्फिस जनाह का, पढ़ो आगे, लिमन इत्तबाका मिनल मुमिनीन, वक्फिस जनाह का लिमन इत्तबाका मिनल मुमिनीन, यानी अपने आप को झुकाओ, आजीजी के साथ रखो आपके मुत्तबीन मोमिनीन के सामने। ये हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मोमिनीन साहबा के सामने आप अपने आप को तवाजू के साथ रखो। तो इमाम बुखारी इस तर्जमतुल बाब के जरिए उस आयत में इस्तिस्ना बतलाना चाहते हैं कि वक्फ इस जनाहक वाली आयत में इस्तिस्ना है कि मुतालिमीन की, मुरीदीन की, सामीन की तरबियत के वास्ते उनके साथ सख्ती भी कर सकते हो। हर जगह वक्फ इस जनाहक नहीं, एक और आयत में भी इस्तिस्ना साबित करना चाहते हैं। एक आयत क्या है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, नरमी, हुजूर को फरमाया गया नरमी करो साहबा से, और आगे क्या फरमाया, वलव कुन्त फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब लन्फ़ض्दु मिन हौलिक, अगर आप सख्ती करेंगे तो ये सब भाग जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे थोड़े से आप भाग जाएंगे सख्ती करोगे तो। वहां आयत से मालूम होता है कि नरमी का बर्ताव करो, तो इमाम बुखारी इस बाब के जरिए से इस्तिस्ना करना चाहते हैं कि भाई तलबा के साथ, मुतालिमीन के साथ, मुरीदीन के साथ नरमी बरतने की, लेकिन बाज मरतबा डांट की भी जरूरत पड़ती है। उसकी भी जरूरत पड़ती है डांट डपट। गोया डांट डपट को भी तरबियत का एक तरीका बतलाया गया है, डांट डपट को तरबियत का एक तरीका बतलाया गया है। नंबर 8, गुस्सा करना सिफत मजमूमा नहीं है। गुस्सा करना हर वक्त सिफत मजमूमा नहीं है, ये भी सिफत महमूदा में शामिल है, पसंदीदा सिफात में गुस्सा भी। अल्लाह से भी साबित है और रसूल से भी साबित है, कुरान में है न वगदिब अल्लाहु अलैहिम, हुजूर से भी साबित है। तो गुस्सा हर मौके पर सिफत मजमूमा नहीं है, बल्कि वो सिफत महमूदा भी है, पसंदीदा सिफत भी है। इसीलिए कभी इस सिफत से भी काम लेने का, रऊफ वाली सिफत से भी काम लेने का, रहीम वाली से भी, और कभी कहार वाली सिफत से भी काम लेने का। तो गुस्सा हर मौके पर हर मर्तबा सिफत मजमूमा नहीं है, वो सिफत महमूदा भी है। दलील अल्लाह को भी गुस्सा आता है, रसूल को भी गुस्सा आता है, लिहाजा इस सिफत से भी काम लेना चाहिए। ये सब है तर्जमतुल बाप के मना मकासिद। जी अबू मसूद अल अंसारी रदी अल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत लाए हैं। उकबा इब्ने अम्र इनका नाम है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस चल रही थी और मजलिस ने एक आदमी ने शिकायत की। खाल रजुलुन, एक शख्स ने मजलिस में शिकायत की, या रसूल अल्लाह, क्या ये शिकायत की? ए अल्लाह के रसूल, ला अकादु उद्रिकु सलात मिम्मा युतव्विलु बिना फुलानुन। अब इतनी इबारत का तर्जुमा ध्यान से देखो, आम फहम तर्जुमा किया है कि मैं नमाज बा जमात पा नहीं पाता हूं, मैं नमाज बा जमात पा नहीं पाता हूं, इसलिए कि फुलाने इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। इमाम साहब का नाम लिया, फुलाने इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं नमाज बा जमात में शिरकत नहीं कर पाता हूं। भाई, आदमी की मशगूलियात होती है और बाज इम्मा बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, मशगूल आदमी कैसे वहां शिरकत करे? तो उन्होंने शिकायत की कि फुलाने इमाम साहब बहुत लंबी नमाजें पढ़ाते हैं, मैं शिरकत नहीं कर पाता हूं वहां पर। दूसरा तर्जुमा देखो, वो सहाबी नमाज में देर से आते थे, शुरू जमात से नहीं आते थे, देर से आते थे। अब देर से आने की वजह क्या बयान करते हैं कि फुलाने इमाम साहब लंबी नमाज पढ़ाते हैं तो मुझे जमात तो मिलने ही वाली है, यानी लंबी नमाज चलेगी, मैं काम में रहता हूं, फिर देखा कि अब रुकू करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी जाके शामिल हो जाता हूं। और शुरू से शिरकत इसलिए नहीं करता हूं कि वो बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, ये पहला मतलब ज्यादा बेहतर है। अब ये किसकी शिकायत की? तौफतुल बारी जिंदा उवल है, किसकी शिकायत की? तौफतुल कारी जिल्द अव्वल, नहीं है यार। अब किसकी शिकायत की? पहला एहतमाल, मुख्तलिफ एहतमालात है, वो देखो। अगर ईशा की नमाज तय है तो ये हजरत माज रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाकिया है। ईशा की नमाज अगर है तो ये हजरत माज रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाकिया है। फजर की नमाज का वाकिया है तो हजरत उबई बिन काब की शिकायत है। और अगर नमाज की कोई तफसील नहीं हो रही है कि कौन सी नमाज, तो ईशा और फजर दोनों का एहतमाल है, दोनों का एहतमाल है कि ईशा हो या फजर की नमाज हो। बाज़ हजरात ने किताबुल अज़ान के हवाले से सराहत की है कि बुखारी शरीफ में किताबुल अज़ान में सरीह वाकिया मौजूद है कि ये कुबा में फजर की नमाज का वाकिया है, मस्जिद कुबा में फजर का वाकिया है। इसलिए हजरत हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का रुझान गालिब ये है, क्या हजरत मास का वाकिया नहीं, वो वहीं से हवाला लेते हैं किताबुल अज़ान से कि किताबुल अज़ान में जो कुबा मस्जिद में फजर का वाकिया है वो है, हजरत मास की शिकायत का वाकिया नहीं है। हतमी तौर पर यह कहा है हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह शिकायत हुई तो हुजूर की हालत क्या हो गई? फमा रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मौइज़तिन अशद्द गज़बन मिन यौमिज़िन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज में कभी इतना गुस्से नहीं देखा जितना उस दिन वाज में हुजूर गुस्से में थे। अब हुजूर ने वाज फरमाए गुस्से में एकदम, और रावी कहते हैं कि ऐसे गुस्से में कभी मैंने हुजूर को नहीं देखा, ऐसे गुस्से में हुजूर ने वाज फरमाया। क्या फरमाया? फकौल अय्युहन्नास, लोगो इन्नकुम मुनफ्फिरूना, तुम लोगों को नफरत दिलाते हो यानी नमाज बा जमात से। लंबी लंबी नमाजें पढ़ के लोगों को नमाज बा जमात से नफरत दिलाते हो। देखो भाई, शरीयत का कोई भी काम बेतुके अंदाज में अंजाम मत दो, वरना तरगीब के बजाय लोगों में नफरत पैदा होगी। कोई भी शरीयत का काम बेतुके अंदाज में अंजाम मत दो, वरना लोगों के अंदर रगबत के बजाय नफरत पैदा होगी। हर काम को सही ढंग से अंजाम देने का, अब तुमको अल्लाह ने इमाम बनाया है तो सही ढंग से इमामत कराओ ना। ये कि मुसल्ला मिला ने माइक वाली मस्जिद, पढ़ने में बाज इमामों को मजा आता है माइक में, वो खींचते जाते हैं, पीछे बीमार है, ज़ईफ है, कमज़ोर है, बस पकड़ने की है सामने बस स्टॉप पर, ट्रक गाड़ी खड़ी करके बेचारे आए हैं नमाज में, कोई लिहाज नहीं, बस माइक मिला और आवाज़ अच्छी चल रही है तो बस लेते ही जा रहे हैं। ये है इसका मतलब कि ऐसा मत करो। फ इन्न फीहिम, इसलिए कि नमाज बा जमात में बीमार, ज़ईफ़ और हाजतमंद लोग होते हैं, सबका लिहाज करो नमाज पढ़ाने में, बीमारों का भी, ज़ईफ़ों का भी और हाजतमंद लोगों का भी। ये देवबन गए क्या लेने के लिए? बुला उसको। فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيدَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، इसलिए कि नमाजियों के मजमे में बीमार भी है, ज़ईफ भी है, हाजतमंद भी है, सबका लिहाज करके नमाज पढ़ानी चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद आली का खुलासा है। अभी यह चंद बातें समझो अच्छी तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज क्यों हुए वाज में? क्या वजह इतने ज्यादा गुस्से होने की? नंबर एक, आसानी पर अमल करने का हुक्म दिया था, उस पर इमाम साहब ने अमल नहीं किया। हुजूर ने जो हुक्म दिया ना भाई आसानी का सुलूक करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आसानी के ऊपर अमल करने का हुक्म दिया था उस पर इन्होंने अमल नहीं किया। कि मैंने हुक्म दिया है आसानी का और फिर तुम इतनी सख्ती करते हो, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा नाराज हुए। नंबर दो, जो बात आप इरशाद फरमा रहे हैं वो ध्यान से सुने, गौर से सुने और दिल दिमाग में बिठा करके अमल करे, इसलिए आपने नाराजगी का अंदाज इख्तियार फरमाया। यानी बाज मरतबा आदमी क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता तकरीर करो तो कोई सुनता उनता है नहीं, ने जलाल में आके करो ने तो सब ध्यान से सुनते हैं। क्या आज बहुत जलाल में है आज, और सुनेंगे भी और जो है दिल में बिठाएंगे भी कि भाई बहुत जलाल में थे नाजिम साहब, जलाल में थे इसीलिए अब तो अमल करना ही पड़ेगा। इस तरीके से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्से होना क्यों था? ताकि लोग बात ध्यान से गौर से सुने और दिल में बिठा लेवे और आइंदा अमल करे इसके लिए। नंबर तीन, शरीयते मुतहरा से लोगों को नफरत दिलाने की वजह से। कैसे काम करते हो कि लोगों को शरीयत से नफरत हो? ऐसी हरकतें करते हो तो शरीयत से नफरत हो जावे, ऐसा काम करना बड़ा संगीन जुर्म है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये तीन वजह हो सकती है खूब गुस्से में वास फरमाने की। लेकिन यहां चंद उमूर और भी समझो। नमाज में तकफीफ का मतलब क्या है? क्या फजर में इन्ना आते ना कुलू अल्लाह पढ़े, ये तकफीफ का मतलब लेते हो? तकफीफ का मतलब ये है कि मसनून की रात के एहतमाम के साथ हल्की नमाज पढ़ो। यानी ये जो मकदार मुतय्यन की गई थी वाले मुफस्सल औसात की सार, ये उसी तकफीफ की रियायत करके ही बयान की गई है, मुतय्यन की गई है, उसकी रियायत करते हुए मसनून की रात का एहतमाम। हाँ, अब ये मसनून की रात आप पढ़ो तो उसमें तरतील में नहीं लग जाने का नमाज में, बल्कि तदवीर से कुछ ज्यादा पढ़ना चाहिए। हदरा पढ़ो, तदवीर से ज्यादा पढ़ो, ये अफजल तरीका, ताकि मसनून की रात की भी रियायत हो जाए और जो है सुन्नत पर अमल के साथ आसानी भी हो जाए, दोनों अमल करना चाहिए, ये मुराद है। तकफीफ का मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि आदमी मसनून की रात भी छोड़ने लगे। अलबत्ता बाज मरतबा मौके की रियायत करनी चाहिए, मसलन आप खुली जगह नमाज पढ़ा रहे हैं, बारिश शुरू हो गई तो कहा नमाज रहमत और रहमत आ रही और भिगने दो लोगों को, और आप किरात करते जाओ, ऐसा नहीं चले। मुख्तसर किरात करो बारिश शुरू हुई तो। हदीस में आपने पढ़ा ना कि बच्चों के रोने की आवाज के आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर फरमा देते थे मस्तूरात के मजमे में से। और सुनाया था ना मैंने वाकया हरम का, कि हज के अंदर एक मरतबा मगरिब की नमाज के अंदर नमाज शुरू हुई और जो है बारिश शुरू हो गई। अब मताफ में हजारों का मजमा होता है, बाहर सहन में भी हजारों का मजमा होता है, बारिश शुरू हो गई जोरदार बारिश, तो इमाम साहब ने हरम में एकदम मुख्तसर का किरात, सूरह फातिहा आदि हुई और बारिश शुरू हुई, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. اللہ اکبر. میں خود موجود تھا اس نماز میں. تو یعنی اعتدال کے ساتھ احوال کی رعایت ہونی چاہیے. یہ ہے لوگوں کو نفرت نہ دلانے کا مطلب. اور ایک قید اور لگا دو کہ رکوع اور سجدہ بھی اطمینان والا ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی اقل مقدار بھی تسبیح آپ نہ پڑھو, تین مرتبہ بھی نہ پڑھو. کم از کم تین مرتبہ پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے. تو رکوع سجدہ اطمینان والا ہو, قرات مسنون ہو, اس انداز میں ہلکی نماز جو ہے پڑھا گئے. یا جمعہ کی فجر میں کتنی منٹ لگتی ہے, سجدہ اور دہرہ پڑھتے ہیں 12-13 منٹ لگتی ہے. کبھی میرے پیچھے پڑھو, میں 9 منٹ میں الحمدللہ پڑھا دیتا ہوں اور قاری ہوں میں. کسی قاری کو پیچھے کھڑا کر لو, لہنے جلی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. تجربہ کر لو جس کو بھی کرنا ہو آ کر کے. تو امت آسانی سے, ورنہ ابھی جمعہ کو لوگ نماز پڑھنے نہیں جا رہے کہ آج پہلی سیدھا اور ہی نماز ہو ہے. کیا ہوا؟ تو یہاں تو بڑے بڑے قرا ہے بھائی, چھوٹے کاری کی کون سنے. اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا واقعہ تھا شکایت کا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے قبیلے کی مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں امامت کراتے تھے. حضور کے ساتھ عشاء پڑھی, پھر اب ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ کہ حضور کے ساتھ پڑھی وہ کون سی اور بستی میں جا کے پڑھائی وہ کون سی. تو وہاں جا کے پھر امامت کراتے تھے. اب دیکھو دیر ہو گئی, اس لیے کہ انہوں نے عشاء تو حضور کے ساتھ پڑھی, پھر وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام ہیں, وہاں لوگ انتظار میں ہیں, وہاں جا کے نماز پڑھاتے تھے اور لمبی نماز پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھائی مسجد نبوی میں, لہذا حضرت معاذ اپنے محلے کی مسجد میں اور تاخیر سے پہنچے. اب امام صاحب کے بغیر محلے والے نماز نہیں پڑھیں گے, اور تاخیر ہو گئے. سورہ بقرہ شروع کر دی, سورہ بقرہ, اور رکو نہیں تھے, رکو تو بعد میں لگے ہیں قرآن میں. سورہ بقرہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے, سورت ختم ہو گئی, تب رکو کریں گے ایسا ان کے عزم میں تھا عشاء میں. ایک صحابی گر گئے نماز میں, چونکہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتے تھے, دن بھر کے کام کاج میں تھکے ہوئے گر گئے وہ نماز کے اندر, نماز توڑ دی اور تنہا انہوں نے نماز پڑھی اور گھر جا کے سو گئے. ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر کے دوسرے صحابہ نے ان کو منافق کہنا شروع کر دیا, فلان النافقہ, کہ نماز با جماعت توڑ کے الگ پڑھی اور گھر جا کے سو گیا, نافقہ. ان پر نفاق کا حکم لگا دیا. اگلے دن وہ صحابی جو بے ہوش ہو کے گرے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور قدرتی بات حضرت معاذ بھی مجلس میں موجود تھے. جب وہ صحابی جو بے ہوش ہو کے گرے تھے وہ شکایت کرنے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت معاذ بھی موجود تھے. انہوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ حضور کل ایسا ایسا ہوا, تو حضور حضرت معاذ پر بہت گرم ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ معاذ تم لوگوں میں آزمائش, لوگوں کو آزمائش میں ڈالو گے, آزمائش میں ڈالو گے لوگوں کو, آئندہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو یا وہاں جا کے ہلکی پھلکی نماز پڑھو. यहाँ पढ़ना होने मेरे साथ तो वहां जाके हल्की पढ़ानी, तंबी फरमा दी हुजूर ने। और फिर किसी मौके पर मदी, ये तो हजरत मास के साथ प्राइवेट मामला हुआ। फिर किसी मौके पर उमूमी मजलिस में भी हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई। उस जमाने में मस्जिद नबवी के अलावा मदीना मुनव्वरा में 9 मसाजिद और थी। बहुत से सहाबा का ये मामूल था कि यहां भी आए फिर वहां जाके अपनी बस्ती में इमामत कराई। बस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो इस रिवायत को इसलिए लाए कि मुअल्लिम मुतअल्लिमीन की बेअदबी खिलाफे उसूली पर गरम हो सकता है, गुस्से हो सकता है, इस बात को बतलाने के लिए ये तर्जमतुल बाब कायम किया है। चलो
به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن أبي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف بكاءها أو قال بعاءها.
देखो ये लफ्ज को अच्छी तरह ज़हन में रखना। उर्दू में काफ के सुकून के साथ हम बोलते हैं लुकता, और अरबी में काफ के फतेह के साथ लुकततुन। ये तलफ्फुज़ ज़हन में रखना। चलो
قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالت الغنم قال لك او لاخيك او للذئب.
غصے کو ثابت کرنے کے لیے دوسری روایت لائے کہ متعلمین کے اوپر غصے ہو سکتے ہیں. اچھا اس سند میں ایک بات دیکھو، سلیمان ابن بلال المدینی، देखा नाम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सनद जिक्र की इसमें नाम आया सुलेमान इबन बिलाल अल मदीनी। जरा इसकी तौजीह वजाहत समझ लो। उस जमाने के अंदर मदीना मुनव्वरा के अलावा और 8 शहरों के साथ लफ्ज मदीना की निस्बत होती थी, लफ्ज मदीना इस्तेमाल होता था। जैसे मदीना मुनव्वरा, तैबा, ताबा, यसरिब पुराना नाम, तो मदीनतुस्सलाम, इस तरह कुल 8 शहर थे उस वक्त दुनिया में कि जिनके साथ लफ्ज़े मदीना इस्तेमाल होता था। अब दोनों में फर्क क्या करते हैं? अगर कोई मदीना मुनव्वरा के रहने वाले शेख है, रावी है, तो उनको मदनी कहते हैं, और मदीना मुनव्वरा के अलावा किसी और शहर के जिसके अंदर भी लफ्ज़ मदीना इस्तेमाल होता है तो उसकी तरफ निस्बत करते हुए अल मदीनी कहते हैं। ये फ़र्क जहन में रखना। अगर कोई रावी असलन मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे हैं तो क्या कहेंगे? अल मदनी। और किसी और ऐसे शहर के बाशिंदे हैं कि जिसकी तरफ लफ्ज़ मदीना इस्तेमाल होता है तो उसको क्या कहेंगे? अल मदीनी। एक आम ज़ाब्ता है। लेकिन बाज मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा के रहने वाले को भी अल मदीनी कहते हैं, जैसे कि खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं अली इब्नुल मदीनी। इनके आबा अजदाद मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे, अगरचे इन्होंने हिजरत कर ली थी बसरा की, लेकिन आबाई निस्बत के एतबार से इनको अल मदनी कहना चाहिए। लेकिन इनका नाम मशहूर है अली इब्नुल मदीनी। तो वहाँ हम यूं कह सकते हैं कि आबा अजदाद के एतबार से अल मदनी, और बाद में चूंकि हजरत इमाम अली इब्नुल मदीनी ने बसरा की हिजरत कर ली थी इसीलिए उनको मदीनी कहा जाने लगा, ऐसा कह सकते हैं। यही हाल है सुलेमान इब्ने बिलाल अल मदीनी का भी, कि असलन ये मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे इसीलिए जाब्ते के मुताबिक इनकी निस्बत क्या होनी चाहिए, सुलेमान इब्न बिलाल अल मदनी, इसीलिए हाशिए में मदनी लिखा हुआ है इनके नाम के साथ। देखो दूसरे तशी सुधा नुस्खे के हवाले से कि अल मदनी, ये भी बाज नुस्खों में है, अन रबी अतबन अब्दुलरहमान अबी अब्दुलरहमान, अन जैद इब्न खालिद अल जुहनी, हजरत जैद इब्न खालिद अल जुहनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मनकुल है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलहु रजुलुन अनिल लुकाताती, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स ने लुकताह के बारे में पूछा। साइल कौन है? नंबर एक, बाद शुर्रा की राय यह है कि ये खुद रावी हदीस हजरत जैद इब्न खालिद जोहनी वही साइल है। नंबर दो, कोई एराबी थे। नंबर तीन, उमेर इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो मुराद है। नंबर चार, सुवेद अल जोहनी रदी अल्लाह ताला अन्हो मुराद है। ये चार एहतमाल है रजुल के बारे में। लुकता के बारे में क्या पूछा? कि हुजूर रास्ते में गिरी पड़ी कोई चीज मिल जावे तो को उठा लेवे कि न उठावे, रहने देवे, क्या करे हम? ये इन साइल का सवाल था। समझ में आया सवाल करने का मंशा? ये इनका सवाल था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बेहतरीन जवाब दिया।